بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقال تعالى: ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اب چونکہ رمضان قریب ہے، اسی لیے اس حدیث کی ابتدا میں اس موقع پر اس حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، تم پر ایک مہینہ آنے والا، ایک مہینہ سایہ فگن ہے. فرمایا: شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے. شہر مبارک، اور بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرے، ویسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کر رہا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس سے پہلے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خاری کا ہے. مائک کو ٹھیک کرو. یہ مہینہ غم خاری کا ہے، یعنی دوسروں کے غم کو بانٹ لینے کا، اس کا احساس کرنے کا مہینہ ہے. جو شخص اس مہینے میں ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے، تو یہ چیز اس کے لیے اس کے مغفرت کا باعث بنے گی، اور جہنم سے چھٹکارا دلانے والی چیز بنے گی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو پوری طریقے سے اسے افطار کرائے، ہر ایک کے پاس اتنی سکت ہو، اتنی سہولت ہو، ایسی بات نہیں ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانا ہی مقصود نہیں ہے، ایک لقمہ، ایک گھونٹ، تھوڑی سی چیز کھلا دے، تھوڑی سی چیز پلا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے. اور فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، اور پھر درمیانی 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن یہ آپ سے چھٹکارے کے ہیں. تو یہ حدیث پاک، اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو اس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، اس کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں، اور امت کے لیے ساری چیزیں اس میں نوازی جا رہی ہیں. ایک عمل پر 70 درجے اس کو فضیلت دی جا رہی ہے. چھوٹا عمل انسان کرے، اس پر بڑا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے. ایک رات کی عبادت، وہ 1000 مہینوں سے بہتر بتایا جا رہا ہے. اتنی ساری فضیلتیں अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, इसका मंशा ये है, इसका मकसूद ये है कि बंदे इस महीने को गफलत से न पढ़ें, कि बंदे इस महीने को अपने हाथ से जाने न दें। तो दिन हो रात हो, जानी इबादत हो माली इबादत हो, कोई भी चीज़ हो उसको कम न समझे, उसको मामूली न समझे, उसको पूरी तरीके से वसूल करने की फिक्र करे। इसकी तरतीब देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। तो आज की मजलिस में इस हदीस पाक को इसीलिए बयान किया जा रहा है ताकि इसके एक एक जुमले पर, इसकी एक एक बात पर हम अमल करने वाले बने। उसकी नीयत यही इसी मजलिस में हम करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह तबारक व तआला फजल करे, इंशाल्लाह नीयत करें। उसके लिए इंसान को चाहिए कि वो पहले ही से अपने दिल दिमाग को, अपनी सोच को, अपने दिल भर के अमल को, काम काज को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश और फिक्र करे। जब कोई बड़ा काम होता है तो इंसान उसको अपने जिम्मे लेने से पहले उससे मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें हैं उनको वो सोचता। एक बड़ा ऑर्डर हो, एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उससे पहले सोचता है कि इतने दिनों में हो सकता है क्या, कि मेरी ताकत की बात है क्या, ये मुझे मेरे पास इतना मैन पावर है क्या, ये सब चीज़ें वो सोच लेता है, सोच कर फिर उसको कबूल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें बयान की जा रही हैं उसमें से हर एक चीज़ भी हम में से हर एक ये कर रही है, क्यों वही है नहीं है। तो अल्लाह जल्ले जलालुहु व मुनवालुहु अपने रहमत के दहाने खोल रहे हैं, अपनी रहमत को उंडेल रहे हैं, अपने रहमत के खजानों को अल्लाह बहाना चाहे। अब कोई न ले, कोई उससे गफलत बरते तो किसका हो। तो कसूर किसी का भी नहीं है, बस इतनी बात है कि हम में से हर एक आने वाले महीने के सिलसिले में इरादा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि भाई दिल ही दिल में दुआ करें, अभी दुआ करें। अल्लाह के जो बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, उसके एक एक दिन एक एक रात की कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उसकी जानी मानी इबादत की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हमें तौफीक अता फरमाए, सब्र की तौफीक अता फरमाए, गमसारी की तौफीक अता फरमाए, लोगों पर तरस खाने का जज्बा अता फरमाए, रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उसकी रहमत के असरे की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, उसके दूसरे अशरे को मगफिरत के हमें नसीब फरमाए, और आखिरी अशरे की मगफिरत और जहन्नम से खुलासे के हमें नसीब फरमाए। तो बहुत आसान चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। बुजुर्गों ज़माना ऐसा है कि पता नहीं कि ये रमज़ान हमें नसीब होगा कि नहीं होगा, अगर ये रमज़ान नसीब हुआ तो आइंदा रमज़ान नसीब होगा कि नहीं होगा। आए दिन हम देख रहे हैं कितने लोग देखते देखते दुनिया से चले जा रहे हैं। अभी है, आज हमारी वापसी मलेशिया से हुई है, हजरत इजामत वर्षा से तो वहाँ 3 दिन का इज्तम था। दूसरे दिन की बात है, दारुल देवबंद से तशरीफ लाए हुए असातिज़ा उलमा इकराम का बयान था। अभी बयान हो ही रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है कि दारुल देवबंद के मुअक्कर बुजुर्ग और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत वो दुनिया से चली गई। जो बयान करने वाले हैं वो हैरत में पड़ गए कि रात को मैं हजरत से बात किया और सुबह होने से पहले पहले हजरत दुनिया से चले गए। वो मेरे रूहानी बाप थे, उन्होंने ही मुझे यहां तक पहुंचाया, उनके सारे एहसान मुझ पर थे। अब खुद खुद के रोने, रात को बात करते हुए बहुत ज्यादा था कि सुबह जो है इनको जो है नसीब नहीं होगा, उससे पहले ही अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। ये इबरत की बात है, ये उनके साथ भी हुआ ऐसा नहीं है, हमें से हर एक के साथ ये बात नहीं जा सकती। इसलिए इस दुनिया की जिंदगी को बहुत गनीमत जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गनीमतन कब्जा कर, पांच चीजों को गनीमत जानो पांच चीजों के आने से पहले। जवाब होगा अपना अर्थ, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के आने से पहले। जवानी के बाजू में ताकत है, कुव्वत है, इंसान जो इरादा करता है वो करने को तैयार हो जाता है, न दिन देखता है न रात देखता है, न धूप देखता है न बारिश देखता है, आमादा हो जाता है, तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये जवानी की बात है। लेकिन उसी इंसान पर जो बुढ़ापा तारीफ हो जाता है तो बैठा हुआ इंसान उठने के लिए भी सोचता है, मैं उड़ गया तो फिर बैठने में तकलीफ होगी, मैं बैठ गया तो फिर उठने तकलीफ होगी, यहां तक सोचता है। और जाने के बारे में तो नहीं, अब नहीं होगा, कोई साथ नहीं है, सहारा नहीं है, सवारी नहीं है, कितनी ही चीजों का इंसान सोचता है। नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल पाने सोचता है, नहीं मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, चढ़े तो सांस फूलती है, ये मुझे ऑपरेशन हुआ है, कैसी कैसी बातें बोलती है, मुझे घुटने में दर्द है, मुझे तकलीफ है। यही इंसान जब जवानी के आरंभ में किसी चीज को भी सोचने तैयार, हर काम को करने तैयार हो रहा है, वही इंसान उसी पर बुढ़ापा जारी होता है, तो हर काम को सोचने पर मजबूर है। तो इसलिए फरमाया, जवानी को गनी मत जानो बुढ़ापे जाए, हयात का कबला होती, और अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत के आने से पहले। अब जाहिर बात है, मौत आ गई, एक सुबहान अल्लाह नहीं बोलते, एक पैसा अल्लाह के राह में सदका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मौत एक हकीकत है जो बर वक्त आएगी, बर उसका आना भी बर वक्त है, और उसका बर वक्त आना ये भी एक हकीकत है, और हर एक पर आए और उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। बोलो कुंतुम की गुरु जी मुझे, अगर के तुम मजबूत दिलों में रहो तो मौत जो है उससे छुटकारा नहीं हो सकता, ये हर एक को आएगा। तो इसलिए वो कब आएगी ये मालूम नहीं, कहाँ आएगी ये भी मालूम नहीं, कब आएगी मालूम। तो इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त चौकन्ना, उसके आगे अपनी जिंदगी को बनी बन जाए, जिंदगी के एक एक लम्हे और लहजे को बनी बन जाए। तो फरमाया, हया तक कबला मौत। तीसरी चीज फरमाया, सेहत का कबला फुकमे की क्या मदद, अपनी सेहत को बनी बन जाए बीमारी जाने। आज अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ये अल्लाह की नेमत, लेकिन इसकी जितनी नाकदरी हो रही है, नाशुक्री हो रही है, इसकी जितनी बेहुरमती हो रही है, अल्लाह माफ। आंखों के सिलसिले में हो, कान के सिलसिले में हो, दिलो दिमाग के सिलसिले में हो, आजा व जवारे के सिलसिले में हो, इज्जत व इस्मत के सिलसिले में हो, ये कुव्वत हो, ताकत हो, इंसान छाया कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये सब चीजें अल्लाह की चीज ही है, अल्लाह की नेमत। फरमाया, अपनी सेहत को बनी बनता बीमारी जान, अल्लाह सबको सेहत सलामत देता। आज मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर रही है, बीमारियां उससे आगे सर चढ़कर बोल रही है, जितनी मशीनें तैयार हो रही है, सबसे बढ़कर बीमारियां भी नहीं आ रही, नया नया मत है, नई नई बीमारियां जो पहले लोग सुनते भी नहीं, और एक एक बीमारी आती है तो इंसान के वजूद को हिलाकर ये मौत के करीब पहुंच जा रहा है, और सेहत मिलते 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 बाजों के घर फरोख्त हो जाए, व्यापार तबाह खत्म हो जाए और पूरी चीजें ठप हो जाए। भाई क्या बात है, नहीं 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये से निकले एक एक ऑपरेशन के लिए। अब बेचारा मामूली खाने का हो, रोज कमाने खाने वाला हो, अल्लाह खैर करे अगर उसके घर में इस किस्म की बीमारियां हैं तो बेचारा क्या करेगा, और रोज के वाकयात हम नहीं करते। एक साहब आंध्रा से आए सीएम से, उनके यहाँ का सफर भी साजिश का होता था, इसलिए उस ताल्लुक से वो वेलूर आए और आकर मुलाकात की और कहा कि हजरत ये बच्चा मिला, मैं इसको लेकर आया अपने इलाज के लिए, आज टेस्टिंग के लिए गया था। डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी लाखों में किसी एक को आती है और इसके इलाज के लिए 27 लाख रुपये। उन्होंने कहा कि हजरत इसके इलाज के लिए मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ, उससे बढ़कर मेरे पास जरूरत नहीं, मैं क्या करूँ हजरत। लोग गुर्दे बेच रहे हैं, अपने दो गुर्दों में से एक गुर्दा बेचकर इलाज करा रहे हैं, दूसरों बदन का खून बेच रहे हैं, ये आंखें बेच रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही। जब समझ में आता है कि हाँ ये सेहत आपकी कितनी बुरी है, हम इसकी कितनी नाकदरी कर रहे हैं अल्लाह, तो इसलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है नेमतानी बहुम उनकी माँ तकदीर हो जाता। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसमें अक्सर लोग धोखे में पड़ते हैं, उनमें एक सेहत है और एक फारी अवकात है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर फरमाया फरावत का अवला शुगली, तेरे फारी अवकात कुछ वक्त तेरे पास है तो इसको गनीमत जान, मसरूफियत जाने दे। इंसान पर मसरूफियत आ जाती है, चारों तरफ से हालात आ जाते हैं, उस तरीके से घिर जाता है, कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता, कहीं जाना चाहे तो जा नहीं सकता, परेशान हो जाता है, चारों तरफ से हालात गया। तो फरमाया कि मसरूफियत के आने से पहले गनी जो है हमारा फारी अवकात बनी है। आज घंटों घंटों इंसान अपने जिंदगी की कीमत के अवकात को मोबाइल के नजर कर देता, स्क्रीन के नजर कर देता है, बैठे तो घंटे घंटे उठते ही, रात रात पूरी रात ये सुनने में वो सुनने में ये देखने में वो देखने में संसार। क्या ये फारे मौका इसीलिए अल्लाह तला ने दिए, इंसान द्वारा सोचे पते अल्लाह खैर करे, ऐसे नजारे देखते हुए ऐसी नाफरमानी की बातें सुनते हुए अगर मौत आ गई तो मौत कैसी हो। आज जिन नालायकों जिन बेअदबों और गुस्ताखों जी जो अजान पे ये गुस्ताखियां कर रहे हैं बेअदबियां कर रहे हैं उसको बैन करने की बातें कर रहे हैं, वो अल्लाह के नाम से नफरत कर रहे हैं और नऊज बिल्लाह हम उनके गानों से मोहब्बत कर रहे हैं, डूब कर मरने की बात हद दर्जे डूब कर रहे गैरत से मरने की बात, वो अल्लाह के नाम से नफरत कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह के नाम से इतनी चिढ़ है और नफरत है, आज हमें उनके गानों से मोहब्बत है, आज उनकी म्यूजिक और म्यूजिक ये इससे हमारे दिल बहलते हैं, अल्लाह को जाकर क्या जवाब देंगे हम जरा सोच कर। वो हवन दबू हमारे कानों की ताकत सल्व करने में एक लहजे में ताकत रखा, हमारी आंखों की बीनाई उचकने में अल्लाह करना एक लम्हे में ताकत, हमारे वजूद को खत्म करने हमें जमीन में धंसा के आसमानों से अजाबों के बरसाने पर खातिर है, वो अल्लाह अपनी गैरत का मुजाहरा करे तो कौन बच सकता। इसलिए हदीस शरीफ में आता है जब फासिक की तारीफ की जाती है, जो नाफरमान है उसकी तारीफ की जाती है, तो تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ غصہ ہوتے ہیں غضبناک ہوتے ہیں, اللہ کا عرش کھڑا ہے, اللہ کے غضب اور غصے سے اللہ کا عرش کھڑا ہوتا ہے. تو جب ایسی بات ہے تو اس میں بزرگوں ڈرنا چاہیے, بہت بہت سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے. یہ کہ میری آنکھیں ہیں, میری زبان ہے, میرے کان ہیں, میری جوانی ہے, میرے پیسے ہیں, میری آرزوئیں ہیں, میری خواہشیں ہیں, نہیں, یہ سب اللہ کی امانت. آگے فرمایا بنا کا قبل فخری, تیری آسودہ حالی کو, تیری مالداری کو گنی بن جان پہلی بھی کیا کسی کو. کتنے لوگ صاحب ثروت و دولت, لیکن ایک وقت آتا ہے لقمے لقمے کے محتاج رہتے. کتنے واقعات تاریخ اسلام میں ایسے بھی خلفاء گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں کی, حکومتیں کی, لیکن ایک وقت آیا انہی کی نسل کے لوگ مسجدوں کی سیڑھیوں پہ کھڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دادا کی بنائی ہوئی مسجد, یہ ہمارے بڑوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے, یہ کہہ کہہ کے بھیک مانگ. یہ دور بھی نہ تھا. تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اور ڈرنا چاہیے. یہ دی ہوئی اللہ کی نعمت, تو مالداری ہو, خوشحالی ہو, صحت مندی ہو, خراب دستی ہو, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نہیں. تو بزرگوں ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ جن چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں گے. تو اس میں سے یہ سوال, مال کہاں سے پہنچا, کس راستے سے تیرے پاس مال آیا, اور مال کہاں خرچ, کن راہوں پر تم نے اس مال کو. آج کمانے کے سلسلے میں بھی یہ احتیاط, اور گنوانے کے سلسلے اور خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی احتیاط. انسان سمجھتا ہے میں ہوں میرا مال, میں جہاں چاہے خرچ کر, نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے. انجینئر انجینئرنگ نہیں جانتا تھا, ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں جانتا تھا, تاجر تجارت نہیں جانتا تھا, کاشتکار کاشتکاری نہیں جانتا تھا, عالم علم نہیں جانتا تھا, کچھ بھی اسے نہیں معلوم. اللہ نے اتنی دن بجال لگوں سما ساروں, اللہ نے تمہیں یہ ذریعے کیے, سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے, تو ان کے ذریعے سے تم آگے بڑھے اور یہ نعمت سے تم نے حاصل. تو جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ لینے کو رکھتا ہے. اس لیے بزرگوں اس دنیا کی زندگی کو, یہاں کے اوقات کو, یہاں کے لمحات کو بہت غنیمت سے سمجھنا چاہیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں بھی سکھائیں. ایک دعا ہے اللہ اللہ فعل الخیرات, اے اللہ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر, اور ترک المنکر برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا کر. ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہے, ہمارے لیے برائی چھوڑنا مشکل ہے, لیکن اللہ کے لیے تو مشکل ہے. ہم اللہ ہی سے مدد مانگے. فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک اور حسن عبادت کی یہ دعا فرمایا کر رہے ہیں. اے اللہ میری مدد کر, تیرے ذکر کرنے پر, تیری شکر گزاری پر, ان اور اچھی باتوں پر, تیری اطاعت پر تیری مدد کرنا, تو میری مدد اللہ کی مدد کو. تو اس لیے ارادے کے ساتھ ساتھ, نیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے, تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم سے کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معذرت تو کر سکیں, اللہ ہم نے آپ سے مدد بھی مانگی. ورنہ اگر ہم مدد نہ مانگیں, دعا نہ کریں, और अल्लाह हमसे ये सवाल करते हैं, तूने मुझसे क्यों मदद नहीं मांगी, क्यों मेरी बारगाह में दुआ नहीं की, अगर तू दुआ किया होता तो मैं तुझे जरूर बचाया। तो अल्लाह की बारगाह में माजरत करते हैं कि अल्लाह से हम मदद भी मांग, दुआएं भी कर। तो बुजुर्गों, अब ये महीना बिल्कुल करीब आ गया है, इसके लिए अभी से हम अपने कामों की तरतीब दें और रमजान के महीने का एक निज़ाम अमल बना, जैसे टाइम टेबल होता है स्कूलों में हो कारखानों में, निज़ाम अमल है, टाइम टेबल है, ऐसा हम में से हर एक भी अपने घरों के लिहाज से, अपने घरवार और कारोबार के लिहाज से एक टाइम टेबल बना लें। आज ही जाकर घर में बैठकर बीवी बच्चों को साथ लेकर, वालिदैन को साथ बिठाकर, उनकी दुआओं और तवज्जो हासिल कर एक मुज़ाकरा करें कि इंशाल्लाह इस रमज़ान को हम अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। अपने औकात की हम तरतीब ले लेंगे, कौन सा काम कब करना है, कितनी देर में खाली होना है, इस तरीके से अगर मशवरा करते हैं इंशाल्लाह ताला इरादा करें। देखो, दुनिया के तमाम कामों के लिए इंसान प्लानिंग करता है, बगैर प्लानिंग के लिए कोई कारखाना नहीं चला सकता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता। दुनिया के लिहाज से हर हर चीज़ इतना दाल है तो इतना उठा सकते, इतना निकल सकते, इतने लेबर है तो इतना जो है प्रोडक्ट होना, इतने पीस निकलना, नहीं निकल रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, उसके लिए लोगों को अपॉइंट करके वो पूरे दिन का जायजा ले रहे हैं, लेकर हजार आदमी काम कर रहे हैं, 10 मिनट बेकार हो रहे हैं। ये 10 मिनट अगर काम में लगे तो इतने पैर और ज्यादा तैयार हो सकते हैं, जूते चप्पल, जूते चप्पल का सब हिसाब करने हमें आता है, हमारे अमल का भी तो हम हिसाब करें। तो इसलिए जो है कितना वक्त हमारा जाया जा रहा है, कौन सा वक्त है, ऐन दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस वक्त में हम दूसरी चीजों में लगे, सहर का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, हर एक परेशान है, हर एक की परेशानी है, जिसके मुंडे पर कांधे पर रखकर हाथ रखकर पूछो खैरियत है क्या, कोई भी परेशानी नहीं है, हर कोई बोलना चाहता। तो परेशानियां जब हैं तो उन परेशानियों को अल्लाह की मार्गा में पेश कर, उनका हल अल्लाह ही से हम मांगें, अल्लाह ही मुश्किल को चाहें, ये अल्लाह ही के कब्जे कुदरत को सारी चीज, क्यों नहीं अल्लाह ही से हम मांगें। जब कभी हुकूमत की तरफ से ऐलान कि भाई आज जिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो आकर बना लें, ऐलान हो गया, अब ऐलान के बावजूद भी उठाकर ना बनाए और वो हाथ से निकल जाए, फिर दूसरी मर्तबा वो पहुंचे और कहे कि मुझे आधार कार्ड बनाओ, तो क्या बोलेंगे, भाई हमने ऐलान किया था, टाइम दिया था, बताया था, अब आप नहीं आए तो हम क्या करेंगे। साफ बात है, आज एक डॉक्यूमेंट के लिए कितना इंसान को फिरना पड़ता है, लाइसेंस लेना हो, फला लेना हो तो कितना इंसान, आज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी फायदे काम इतना पढ़कर होना, समझते हैं, अब पढ़े नहीं है, मजबूरी है, जिंदगी आगे बढ़ेगी, उम्र हो गई है, अब लाइसेंस लेना है तो परेशानी हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत खुद ऐलान करे भाई जिसे लाइसेंस लेना है आज आकर ले ले, कोई कैद नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है, आ जाए। अब इस मौके पर अगर कोई हाथ से कमा ले बाद में बचता है तो क्या करें। तो इस तरीके से उधर जाने मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला को मेहमान करो, मेरी रहमत के दहाने खुले हैं, मकफरत के दहाने, बख्शीश के दहाने, आज़ादी से लेना ही दे रहा। कहते हैं कुछ लोग गुजर रहे थे रास्ते में, कुछ बोटियां थी, हमें कुछ चीज थी वो पड़ी हुई और उधर कुछ किस चीज लिखी हुई है, जो उठाएगा वो भी पछताएगा आएगा, जो नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा आएगा। ये क्या फलसफा है, ये क्या मंजिल है, उठाने वाला भी पछताएगा आएगा, नहीं उठाने वाला भी पछताएगा आएगा। तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई उठाकर पछताने के बजाय नहीं उठाने पर वो आगे बढ़े, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई चलो पूरा नहीं सही, दो चार बोटियां जो है थोड़ा तो कुछ उठा के देखने जा रहे वो उठा लिया। फिर आगे बढ़े, जब रोशनी थी वहां खोल कर देखे तो उसमें अशरफियां थी, जो थोड़ा उठाए वो भी बचता है, अरे पूरी समझ लेते तो अच्छा था, जो नहीं उठाए वो भी पढ़ता है, अरे एक तो भी उठा दू, एक भी उठाएंगे मैं। ये हाल है हमारी जिंदगी का, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, जिसे लेना है ले लो, अब जो जितना ले उसकी ताकत की बात है। इसलिए निजामुल अमल बनाकर इंशाअल्लाह ताला अपने औकात की तकसीम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी होगी। काम काज वाले भी जो है, दुकान हो, कारखाना हो, जॉब हो, शॉप हो, वो भी तरतीब बना के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत खुश होंगे, मेरे बंदे मेरी इबादत के लिए, नेकियों के लिए इतना सोच रहे हैं, क्या इतनी प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को खूब जो है नफे को बढ़ा देंगे, हमें जो है नेकियों के आर्डर ज्यादा मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे बेटा। एक दूसरी बात है, इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में यहाँ जो है महीने भर का निजाम रहेगा तरबियती निजाम, उस सिलसिले में चंद बातें की जा रही हैं। पहली बात यह है कि वो शरई एतकाफ नहीं है, इसलिए कि ये शरई मस्जिद नहीं है, इसलिए हम साफ बता देते हैं। हाँ, एतकाफ ही की तरह पूरा दिन यही रहना है, पूरे अपने अवकाश को तरतीब के साथ यहाँ पर जैसा निजाम बताया जाता है उस तरीके पर यहाँ गुजारना है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो हजरत आने का इरादा रखते हैं आखिर में ऐलान होगा, उस सिलसिले में चंद बातें बताएंगे। उससे पहले यहाँ आने के बाद हमको क्या करना है, अब जब हम हजरत जी दामद बरकातुन की खिदमत में अब गए थे, तीन दिन का जो इज्तिमा था उसमें सबसे पहले इन चीजों का मुजाकरा हुआ, और हजरत दामद बरकातुन की हिदायत है जो हजरत के खलीफा ने मजमे में पेश किया, तो इसीलिए हम बेहतर समझते हैं कि वो इन दोनों बातों को आपकी खिदमत में पेश करें ताकि आने वाले इन चीजों का इंशाअल्लाह ख्याल रखें। पहली बात है, जो आए तो वो अल्लाह का एहसान मानते हुए शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की तौफीक पर खुश होते हुए कि अल्लाह ने ये अच्छा वक्त गुजारने के लिए हमको भेजा है, इस जज्बे के साथ आए। इस्लाह की नीयत से आए, मेरी इस्लाह होनी है, जैसे इंसान अस्पताल जाता है काय के वास्ते, हाँ मेरी तबीयत अच्छी हो, मेरी बदन की बीमारियां दूर, उस तरीके से उस इरादे से यहाँ आए कि मेरी वादी की बीमारियां दूर हो, मेरी इस्लाह, इस नीयत से यहाँ आए, उसके लिए नीयत करते हुए आए, अल्लाह पाक से दुआएं मांगते। फिर पहली बात फरमाया, जितने भी दिन यहाँ रहे एतकाफ की नीयत से गुजारे, उस तरीके की नीयत करते हैं जैसे मस्जिद में हम रहते हैं, उस तरीके शरई एतकाफ नहीं है, साफ हम बता देते हैं, फिर भी ये एतकाफ की तरह वक्त हम यहाँ गुजारेंगे, इस तरीके से यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। दूसरी बात फरमाया कि आते हुए भी हम ये इरादा करते हैं कि ये वक्त हम अल्लाह को दे रहे हैं, जब हम एक चीज दूसरों को देने की बात कर देते हैं, वादा कर देते हैं, तो वह जो भी उनकी हो, तो इस तरीके से है कि यह हम यह अपना वक्त अल्लाह को दे रहे हैं, तो जब हम अल्लाह को दे रहे हैं तो उसका पूरा ख्याल रखें कि पूरी तरीके से हम दें, समझ लें, और पूरे सिफात के साथ खूबियों के साथ हम अल्लाह को दें। तीसरी चीज फरमाया कि बेजरूरत बातचीत से मुकम्मल परहेज करें, ये बहुत जरूरी है। पहले जमाने में खानकाओं में चार चीजों में कमी कराते थे, खाने में, सोने में, बातचीत में, आपस में मुलाकात, तकलील काम, तकलील मनाम, तकलील कलाम, तकलील कलाम मालनाम, ये चार चीजें बहुत इसमें जो है पाबंदी होती थी खानकाओं में, वो खाने में भी एहतियात, सोने में भी एहतियात। अब के बुजुर्गों ने कहा क्या है, ऐसा कराएंगे तो लोग आने के बजाय जाते जाते सलाम करते रहेंगे, सलाम हजरत, हम घर में थे जाते मिनान से रहते, आधा पेट खाना करते थे, आधी नींद सोना करते, नब्बो हजरत न बोल कर चले। हाँ, हम अब बुजुर्गों ने कहा है कि भाई आप पेट भर खा लें, नींद भर सो लें, उसमें भी लफ्ज़ पर पेट भर खा ले। फरमाया पेट भर खा लो, जी भर मत खाओ। दोनों में फर्क क्या है? ज्यादा भूख लगी है दो रुपये ज्यादा खाए, ये पेट भर खाना। जी भर का मतलब ये है कि ये आइटम भी वो आइटम भी, तकाजा नहीं तो भी फिर खाना, सुध सुध को जाकर खाना, फ्रिज में क्या है ये उठाकर खाए, वो उठाकर पिए, चाय भी गर्म भी ठंडा भी, बेजोड़ चीजें खा रहे खा रहे, ये नफ्स भर जी भर खाना है। और जी कभी भी भरेगा नहीं, खबर की मट्टी ही जी को भरेगी। तो इसलिए जी भर खाने की छोड़ दे, पेट भर खाना है तो चार लोग ज्यादा खाना है, खा लेंगे, समझ, ज्यादा भूख लगी है पता ना। तो इसलिए खाने और सोने में, हाँ सोने में भी जितनी जरूरत है उतनी दिन पूरी करना, वरना ज्यादा जगा देंगे तो कुछ किया जाएंगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन दो चीज हमें पूरा एहतमाम हो, आपस की बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिंदगी भर बात करते करते गुजार नहीं, यहां आकर भी बात करते, इसके बातचीत आपस में मेल मिलाकर तुम्हें करना, तुम्हारे गाँव को करना क्या है, वहां शरीर खुलना शुरू हो जाते हैं, समझ रहे। इसमें अस्सलाम वालेकुम वाले बस इससे आगे बढ़कर तुम्हें फोन कर कर सुनना है, गांव वाले लोग को सुनना है, इसका खास ख्याल रखना। अगर इसकी हिम्मत है तो नियत करके आए। तो इसलिए फरमाया कि बेजा बातों से बिल्कुल मुकम्मल परहेज करें। सियासी हालत का तबसरा तस्करा यहां ना करें, पॉलिटिकल पार्टी ये पार्टी वो पार्टी है ऐसा वैसा, ये फिजा यहां ना बने, समझ रहे हो। तो इसको सब खैर बात करके आए, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। फरमाया आमाल हुकुम उम्माल, तुम्हारे आमाल वो कौन है? तो तुम तुम्हारे हुकुमरान, तुम्हारे आमाल के लिहाज से अल्लाह ताला तुमको हुकुमरानों को मुकर्रर कर। तो इसलिए हमें अपने आमाल को बदलने की फिक्र होनी चाहिए। अगर जालिम लोग हम पर मुकर्रर हैं तो हमें डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज होकर ये चीजें हम पर आ रही हैं। एक बुजुर्ग थे, उनके सामने कुछ लोग आकर शिकायत की, नादिर शाह बादशाह ऐसा जालिम है, उसके सामने रोज आना तश्तरी में लोगों की आंखें निकाल कर लाकर बैठता था, ऐसा था क्या जुलूम ढा रहा है। जब उन बुजुर्ग के पास आकर उन लोगों ने कहा तो हजरत ने एक जुमला ऐसा कहा, पादा से अमाल माँ सूर से नादिर, फरमाया हमारे अमाल का बदला नादिर शाह की शक्ल में आया, तो हमारे अमाल ऐसे हो गए हैं इसलिए जालिम बादशाह हम पर मुकर। तो फरमाया सियासी हालात पर तबसरा या ना करें, बेकार की चीजें हैं उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। चौथी चीज फरमाया ज्यादा से ज्यादा सिख जिक्र और फिक्र में वक्त गुजारें, इतना जिक्र करें इतना जिक्र करें, फरमाया कि इस्तेगराक की कैफियत हमको नसीब हो जाए, हम ऐसा अल्लाह की याद में अल्लाह के जिक्र में डूब जाएं वह उसी में गर्क हो गए। कोई बाहर से आकर देखने वाला देखे तो ये महसूस करें कि भाई ये लोग तो किसी और दुनिया के लोग, समझ रहे, इनकी फिक्र इनकी सोच इनका अंदाज वैसा नहीं है जैसे हम लोगों का, ये किसी गहरी सोच में है किसी फिक्र में, ऐसा महसूस करें तो फरमाया इसके खराब की कैफियत हो, इस तरीके से अपना यहाँ वक्त गुजारे। उसके लिए आते हुए ही दो रकअत सलात तौबा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पिछले गुनाहों की माफी मांगते हुए आइंदा की तौफीक मांगते हुए ये काम को हम क्या करें शुरू। फिर फरमाया तहज्जुद का एहतमाम बिल्कुल जरूरी है, हाँ और दिनों में भी होना चाहिए, खासतौर पर रमजान में और यहाँ की हाजिरी में ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पहले हजरत शेख हजरत कितना आजाद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे, हमारे सिलसिले की कोई खास निशानी नहीं, ऐसी टोपी ऐसा पेठा ऐसी शान ऐसा लिबास, कोई खास शनाख्त नहीं है। हमारे सिलसिले की पहचान दो चीजें, बंदों के साथ मामूलात की सफाई और रब के साथ सभ्यदारी का मौन, यानी मामूलात हमारे साफ, कोई बंदा हमारी तरफ उंगली उठाकर ये ना करे बड़ा तस्बीहां पढ़े तो बड़ा नमाज पढ़े तो बड़ा दीन की बात करे, बड़े मुराकबे करे, इतने पैसे मारकूस कर ले, इतने हरजा बात लगती है। इस तरीके की कोई बात हमारी तरफ कहने वाला उंगली उठाने वाला ना, ये हमारे सिलसिले की पहली पहचान। और फरमाया दूसरी पहचान ये है कि हमारे सिलसिले के लोगों के लिए शब कदर और शब बरात कोई खास अहमियत, इसलिए कि हर रात हमारी शब बरात है, हर रात हमारी शब, तो हम हर रात जागने वाले बने, ये हमारी प्रार्थना। तो इसलिए जिक्र का है तो ये तहज्जुद का अहतमाम हो, तहज्जुद के अहतमाम के लिए है फरमाया जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, इसलिए जो मतलब अमल होंगे उसे फरारत के बाद फौरन सोकर सुबह जल्दी उठने का अहतमाम। फरमाया हमेशा बावजू रहने का अहतमाम, बावजू रहने से वकूफ़ कल्बी की दौलत हमको नसीब होती है। वकूफ़ कल्बी यानी हमेशा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है, इसके लिए ये बहुत मददगार चीज है कि इंसान हमेशा बावजू रहे। इसीलिए हमारे सिलसिले के मशाइख फरमाते हैं हमारे सिलसिले में दो चीजों से समझौता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यानी छोड़ को देना नहीं। एक बगैर वजू के नहीं रहना, एक बगैर रुकू के तलबी के नहीं रहना। कोई भी काम हम करेंगे कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, ये रुकू के तलबी की दौलत है, ये हमको गुनाहों से बचाएगी। जब अल्लाह की हाजिरी का यकीन है, अल्लाह तबारक व तआला की मैयत का यकीन हो, तो हम इंशाअल्लाह ताला सही रास्ते पर रहेंगे, सही कामों को करेंगे, गुनाहों से अस्कुत बचेंगे। तो ये रुकू के तलबी के लिए बहुत मददगार बनेंगे। और जो यहाँ इज्तमाही अमाल होंगे, बयानात होंगे, उनको तवज्जो के साथ सुनेंगे, सुनेंगे तो ही अमल करेंगे। ये तो इसलिए उस वक्त अब जब इंसान सोने के वक्त नहीं सोएगा तो फिर बयान के वक्त सोएगा, तो ये बेतरतीब शैतान कराएगा। जिस वक्त जो अमल करना है उस वक्त नहीं कराएगा, तो दूसरे वक्त में जो है उसको पूरा करेगा। तो ऐसा ना इज्तमाही अमाल के वक्त इज्तमाही अमाल, इंफिरादी अमल के वक्त इंफिरादी। तो इसलिए फरमाया तमाम बयान हमारे जो कि उनको गौर से सुने। और फरमाया आते हुए ही इंसान कुछ पहले से मेहनत करके, ये कुछ अल्लाह की मुहब्बत को दिल में लेके वो यहां पहुंचे, तब वो यहां आकर तरक्की करेगा। जैसे बुजुर्गों की खिदमत में कुछ लोग हाजिर होते थे, आए चंद दिनों में उनको जिम्मेदारी दे देते थे, खिलाफत दे देते थे, इजाजत दे देते थे। दूसरे लोगों को ताजुब होता था, हम इतने अरसों से यहाँ पढ़े, ये साहब आए तो भी चले गए, कुछ जिम्मेदारी दे दिए। तो बुजुर्गान भी फरमाते थे भाई वो अपनी चराग बत्ती वगैरह को सही करके लाया है और हमने यहाँ पर सिर्फ जो है आज इसे इश्क उसके दिल में लगा दिया। वो तैयारी के साथ आया था इसलिए उसका जनाब जलना शुरू हो, और तुम लोग गीली और कच्ची लकड़ी की तरह आए हो, गीली लकड़ी को जलाने में कितनी तकलीफ होती है, इस तरीके से तुम्हारा हाल है। ये दिलों में रुखलत है, ये मुर्दनी छाई हुई है, अंदर से कोई तलब नहीं है, कोई जो है मोहब्बत अल्लाह से नहीं है, दुनिया से बेदार अल्लाह आखिरत की तरफ रखकर इस तरह की कोई चीजें नहीं है, बेतलबी के साथ आई है। अभी कच्ची लकड़ी की तरह इसको जलाने में वक्त लगता है, तो इसलिए आते हैं तलब के साथ, शौक के साथ आए तो अल्लाह तबारक व तआला आज से भड़का देते हैं। आगे फरमाया हर काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, जो कि हमारा हर जगह हर वक्त करना ही है, लेकिन यहाँ आते हुए वही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो इसलिए सुबह से लेकर शाम तक की हर हर काम कदम कदम की सुन्नतों की रियायत। फरमाया सुन्नत की मिसाल बदन के जेवर की तरह, दुल्हन को जिस तरीके से गले में हार पहना, आंखों हाथों में अंगूठियां पैरों में अंगूठे, मुख्तलिफ किस्म के जेवरों से उसको आरास्ता करके शौहर के पास गए। क्यों मालूम नहीं शौहर को कौन सा जेवर पसंद आया, और उसकी वजह से उसकी मोहब्बत जो है उसके दिल में बीवी की मोहब्बत आ गई। तो फरमा जैसे जेवर हो तो उसको सजा करके, ऐसे ही रसूल सल्लम की सुन्नतें कि अल्लाह तबारक ताला को महबूब की कौन सी सुन्नत पसंद है, कौन सा अमल दिल को लगता है, इसलिए हर सुन्नत पर नीयत के साथ हमें आना चाहिए। फिर फरमाया कि सेलफोन के इस्तेमाल के पीछे नहीं परहेज करें, ये है मसला। धूप छोड़कर आ जाएंगे क्या कुंजी बोलिया उलगत पंद इलादवन इकलाम आना सेल इलादवन हर एक के पास है। अगर तुम्हारे पास भी है ना बयान में भी बजाना हजरत के, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, सुबह से लोग फोना कर रहे हैं, मैं क्या करूं, इतना भी एहसास नहीं है, मैं इतने लंबे सफर से हजरत आदमी से क्या तुम्हें आगे क्या हजरत, मैं यहां हूं ना हजरत, तुम्हें कहा नहीं हजरत। अल्लाह के बंदो हर मजलिस में ऐलान होता है, मजलिस के सिलसिले में जो नंबर दिया जाता है उनसे कॉन्टैक्ट करें, मजलिस के बारे में उनसे मालूम करें। बार बार ये कहा जाता है, मैं आज इतना थक हार के आया हूं सफर से, लंबा रात भर जगा हूं, दोपहर में थोड़ी देर के लिए बैठा तो आंख बंद हुई, इतने फोन आ रहे हैं, आप मजलिस में क्या, मैं चाच पड़ी पड़ गया हूं, अब मैं यहां हूं, आप कहा हूं। अल्लाह के वास्ते रहम करें, ऐसा नहीं किया जाता, समझ रहे। इसलिए ये मोबाइल की जो परेशानी है इससे अपने को बचाएं। सबसे ज्यादा इंसान खुद परेशान हो रहा है, लहजे लहजे तो बोलते बयान में बैठे तो वाइब्रेशन मूड में भी मतलब फोन आया तो वो वाइब्रेट करते, दिल भी वाइब्रेट होना, किसका फोन आया कि ना, क्या फोन है कि ना, कौन करेंगे ना करेंगे, एक सो ही नहीं देंगे। इसलिए यहां आकर जब तक रहेंगे अब तक बिल्कुल टच ही नहीं रहे, भाई ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंच गए हैं, दूर बस्ती से आए हैं, फोन करके घर वालों को बताते हैं कितना पहले से पहुंच गया, फिर आप इसके साथ हो दुआ करते रहे, मैं भी इंशाल्लाह ताला अच्छे होते होते वक्त गुजारने की नीयत कर रहा हूँ, आप भी मेरे दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, खैर खैर सुना जी। जब जब खोल के देखते रहना, व्हाट्सएप देखते रहना, अल्लाह नेट है व्हाट्सएप है, परेशानी आती इंसान की परेशानी, जहाँ देखे इंसान लहजे में अपना लगता है, दिन भर वो रहा, एक दुआ किया, जिक्र किया, मुराकबा किया, नमाज पढ़ा, सब किया, रात में खोला नेट खोलते ही कुछ और दिन खोले पूरी की दौरानियत खत्म, इसलिए अल्लाह की बात है उससे अल्लाह तबारक व ताला ने एक मिसाल बयान की है कुरान पाक, तुम ऐसे ना हो जाओ कल्लती नकजत रसलहा मिबादी कुव्वतिन अनकासा, उस दीवानी बूढ़ी की तरह मत हो जाओ जो दिन भर खून काटती है, फूल फूल बुनते हैं वनीन वगैरह, दिन भर खून काटती है और शाम को फिर उसको खोल देती है, यही काम है उसका, रात दिन भर वही करती है फिर खोल देती है। अब कितनी हिमाकत की चीज को कर रही है, ठीक बावलापन है कि दिन भर की मेहनत खुद जाया कर, यही हाल होगा, दिन भर हम जो है नूरानियत की चीजें हासिल करें और फिर रात में एक नजर हमारी गलत चीज पर पड़ी तो पूरी नूरानियत हमारी खत्म हो जाएगी, तहस नहीं जाएगी। इसलिए मोबाइल के सिलसिले में पूरा है अल्लाह के वास्ते, यहाँ का माहौल खराब नहीं, समझ रहे, देखो दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही, अल्लाह बचा के रखे, कोई तुमको ऐसी ऐसी चीज नजर नहीं आई, अल्लाह ने अपने बदल से चरम से ये जगह हमको दी, समझ रहे, हजार लोग तुमको अपने ऊंची दूर जाकर बने, जंगल में जाकर बने, क्या अंधेरे में जाकर बने, इसीलिए बने अल्लाह से अल्लाह तला जाहिर किए, बेहयाई से बदमाशी से मारपीट से अल्लाह तला ने हमको बचा के इस जगह में रखा है, समझ रहे। इसलिए जब जाहिर की गंदगी से अल्लाह ने हमें बचाया है तो बातिन की गंदगी से हमें यहाँ इस तरह की चीजों से शुरू करने के लिए अल्लाह की पनाह मांगे, ऐसा माहौल जहां पर जाना। आखिर में फरमाया निजाम की पाबंदी करें, जो निजाम यहां बयान किया गया था उसके मुताबिक। तो इस सिलसिले में जो है आखिर में ऐलान करना, उसका ख्याल रखें, अल्लाह पाक आने वाले महीने की पूरी कदरदानी हमें तो पता फरमाए कि रमजान का महीना ये बहुत मुअज्ज़ज़ मेहमान की तरह है, मुअज्ज़ज़ मेहमान कहीं आता है उसकी मेहमानी अच्छी होती है, तो मेहमान कभी तो दिल में और कभी तो जुबान से कह के जाता है कि आइंदा दोबारा इस घर को आना, और अगर उसकी कदर नहीं हुई, नाकदरी हुई, तो दिल में तो इरादा करके ही जाएगा और कभी जुबान से भी कह देगा कि तो मैं आइंदा इस घर में कदम नहीं रखूं। इसी तरीके से रमजान का महीना जो आ रहा है, अगर इसकी कदर हमने की तो ये हमारी बख्शिश मगफिरत कराते हुए जाएगा, और अल्लाह माफ करना इसकी ना तकलीफ हुई तो वो बद्दुआ देते हुए कि तबाह और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो इस महीने को पाए और अपनी मगफिरत न चाहे। अल्लाह हम सबकी पता, थोड़ी देर के लिए हम मुरा हवा करते हैं, दुआ करते हैं, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की याद में रुक जाएं। इंसान जो अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असली तस्वीर नजर आती है, दिल के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए, नियत ये करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, और मेरा दिल कह रहा है الكريم وعلى آله وصحبه في كل وقت ونفسٍ بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الأهوال وجميع الآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله باق پروردگار آپ کے گناہگار خطاکار سیاکار ناہنجار نا قدر بندے حاضر ہوئے ہیں اللہ آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ. اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ. ہم اقراری مجرم ہیں اللہ. ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ. ہم خود اپنے گناہوں کی گواہی دیتے ہیں اللہ. بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ. کوئی چیز نہیں ہے اللہ سوائے گناہوں کی گٹھری کے اللہ. سر پہ گناہوں کا بوجھ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اللہ. اے اللہ اے رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے اللہ, معاف فرما دیجیے اللہ, معاف فرما دیجیے. अल्लाह आपने बहुत माफ किया है अल्लाह, फिर भी माफ करवा दीजिए अल्लाह। अल्लाह जी आप हमें जहन्नम में डाल के क्या करेंगे अल्लाह, हम आपकी नाफरमानी करके क्या करेंगे अल्लाह। अल्लाह शैतान के बहकावे की वजह से, नफ्स के बहकावे की वजह से हमने आपकी नाफरमानी की है अल्लाह। या अल्लाह हमसे नादानी में गुनाह हुआ है अल्लाह, लेकिन या अल्लाह ये भी कहते हुए डर लगता है आप देख रहे थे हम गुनाह कर रहे थे अल्लाह, हमने गुनाहों की वजह से आपके गजब को भड़काया है, आपके कहर को ललकारा है अल्लाह। आप चाहे तो जमीन को फाड़ कर धंसा सकते थे, आसमान से अल्लाह उतार सकते थे, अल्लाह आपने मेहरबानी फरमाई तो हम गुनाहों पे और डट गए अल्लाह, अड़ गए अल्लाह, गुनाहों पे सख्त हो गए अल्लाह। आज माफी मांगते हैं अल्लाह, माफ करवा दी अल्लाह, माफ करवा दी अल्लाह, माफ करवा दी अल्लाह, माफ करवा दी अल्लाह। अगर आपने माफ कर दिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा अल्लाह, हमारा बन जाएगा अल्लाह, हमारी बिगड़ी बन जाएगी अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, हमें भी माफ फरमाइए, हमारे वालिदैन को भी माफ फरमाइए, हमारे बीवी बच्चों को भी माफ फरमाइए, हमारे भाई बहनों को भी माफ फरमाइए, हमारे खानदान वालों को भी माफ करो अल्लाह, सारे जहां वालों को माफ फरमाए अल्लाह, सबको नेक तौफीक अता फरमाइए अल्लाह, सबको नेक तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। आपकी कितनी बड़ी बड़ी रातें आती हैं, कितने बड़े बड़े महीने आते हैं, लेकिन हमारे ताल्लुक वाले, हमारे रिश्तेदार कितने हैं अल्लाह, जो वैसे वक्त में भी आपके हुक्मों को तोड़ते हैं अल्लाह, हराम कामों में पड़े रहते हैं अल्लाह, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं अल्लाह। हमारा खूनी रिश्ता भी है अल्लाह, रिश्तेदारी भी है अल्लाह, ताल्लुक भी है अल्लाह, सबको नेक तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, सबको नेक तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह। हमारी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक बच्चे को माँ नहला धुला कर खुशबू लगा कर बाहर भेजती है और कहती है कपड़े गंदे नहीं करना, खबरदार। लेकिन बच्चा थोड़ी देर में कपड़ों में लथपथ हो, गंदगी में लथपथ होकर आता है, माँ घूर घूर के तेज निगाहों से देखती है, बच्चा शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए कहता है माँ गंदा होना मेरा काम है, पाक करना तेरा काम है अल्लाह, हमारा हाल यही है, आपने ईमान की नेमत से नवाजा, इस्लाम की दौलत अता फरमाई और दुनिया में भेजा, खबरदार इसको खराब नहीं करना अल्लाह, हम अपना ईमान भी खराब कर लिए हैं, अपना यकीन भी बिगड़ गया है, हमारे आमाल भी खराब हो चुके हैं, हमारे अखलाक तबाह हो चुके हैं अल्लाह। हम यही कहते हैं अल्लाह, गुनाह हमसे होता है अल्लाह, माफ़ी आपसे होती है अल्लाह, आप माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, आप माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। उस माँ को तरस आ जाता है, वो अपने बच्चे को फेंक नहीं देती, उसके बदन से और उसके कपड़ों से गलाजत को दूर करके फिर उसे नहला धुला कर अपने सीनों से लगा रहती है अल्लाह। हमें भी है अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपनी रहमत के आगोश में ले लीजिए अल्लाह, अपने आगोश की रहमत में ले लीजिए अल्लाह। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा न किया, हमने जहन्नम की बहुत की तस्वीर, मगर तेरी रहमत ने घबरा न किया अल्लाह। आपकी रहमत तो ए अल्लाह, अपनी रहमत के दहाने खोले हुए अपने बंदों को बुला दी है अल्लाह, हम ही ना हिंजार हैं अल्लाह, ना कदरे हैं अल्लाह, हम आपकी रहमत को लेने से दूर होते हैं अल्लाह। आपकी रहमत तो कहती है बाजा बाजा, बंदे आजा आजा, हर आंचे हस्ती बाजा, जो कुछ के तू हो आजा, ईं दर गए माँ दर गए ना उम्मीद नेस, गर काफिर हो गबरो बुत परस्ती बाजा, अगर तू काफिर भी हो तो आजा, अगर तू बुत परस्त भी हो तो आजा, अगर तू आतिश परस्त भी हो तो आजा, मेरा ये दरबार ना उम्मीदी का दरबार नहीं है, गर सद बार तोबा शिकस्ती बाजा, अगर तूने 100 बार भी तोबा करके तोड़ा है तो आजा अल्लाह। हम आपकी बारगाह में आ गए हैं अल्लाह, अल्लाह आ गए हैं अल्लाह, अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें खींच लीजिए अल्लाह, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दीजिए अल्लाह, एक बार कह दीजिए अल्लाह मैंने तुम सबको माफ कर दिया है अल्लाह। अंतुमुत्तुलका ला तस्लीम अलैकुम अल्यौम, अल्लाह आपके एक बंदे ने कहा था आज तुम्हारे ऊपर कोई बाजपुरुष नहीं है, तुम सब आजाद हो, चलना जाओ, आपका एक बंदा कह सकता है तो आप तो अल्लाह हैं, आप कह दीजिए अल्लाह तुम सब आजाद हो, تمہیں سب جہنم سے میں نے چھٹکارا دے دیا ہے، اپنی رحمت میں لے لیا ہے، اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی اللہ، نہیں تو پھر نفس و شیطان اے اللہ ہم کو بہکا دیں گے اللہ، اے اللہ اور ہم غلط راستوں پہ چلے جائیں گے اللہ۔ وہ کہے گا کہ جب تمہاری بخشش نہیں ہوگی تو پھر معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہے، گناہ چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے، آخر میں معافی مانگ لے گا، اللہ گناہوں پہ گناہ کرا دے گا۔ اللہ جی چھٹکارا دلا دیجیے، نا امیدی سے بچا لیجیے، ایک بار سب کو معاف فرما دیجیے، ایک سب پہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ تمام بری عادتوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے، برے ماحول سے بچا لیجیے، برے دوستوں سے بچائیے، ہر بری عادت سے بچائیے، ہر برائی کے ماحول سے بچائیے، ہمارے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نیک لوگوں نے کہا ہے، یار بد بدتر بد ازمار بد، برا دوست برے سانپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ، کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اللہ، آپ خود فضل فرما دیجیے اللہ، آپ خود بچا لیجیے اللہ، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے اللہ۔ اے اللہ زمانہ بہت نازک ہے اللہ، بچے بھی بہت تیز ہیں اللہ، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، اے اللہ خاندانوں کی ذات عزت کی لاج رکھ لیجیے اللہ، اے کریمہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ روحانی جسمانی صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ قرض سے بچائیے، مرض سے بچائیے، قلت سے بچائیے، علت سے بچائیے، ذلت سے بچائیے، امت کے مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے۔ امت کٹ رہی ہے اللہ، پیٹ رہی ہے اللہ، لٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ، جو چاہے بہا رہا ہے اللہ، ہم مانتے ہیں گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، ناہنجار ہے، بڑے گندے ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تو کہا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کہنا، اللہ جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ اس سے نرمی کا حکم دے رہے ہیں، ہم آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، آپ بھی ہمارے بارے میں نرمی کا معاملہ فرما دی، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دی، امت کے حال پر رحم فرما دی، اے اللہ امت چوراہے پہ کھڑی ہے، اے اللہ قوام پوری ہے اللہ، اس پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے اللہ، نوچ کھا رہے ہیں اللہ، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے اللہ، کوئی غم کھانے والا نہیں ہے اللہ، ہماری محنت کی اے اللہ صبح کے لٹ رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اللہ رمضان آ رہا ہے، ہم تو نرم نرم بستروں میں سوئیں گے اللہ، گرم گرم کھانے کھائیں گے اللہ، کتنے آپ کے بندے اور بندیاں ہوں گی اللہ، جن کے لیے کھانے کو کھانا نہیں، اے اللہ سر چھپانے کو ٹھکانا نہیں، کتنی پاک پاک دامن عورتیں ہوں گی یا اللہ، جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، اے اللہ سحر کے لیے کوئی لقمہ نہیں ہوگا، اے اللہ عید کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی، بچے ماں سے پوچھ رہے ہوں گے ابو امی کب آئیں گے، کوئی جیل میں ہے، کوئی دشمنوں کے کوئی جنگل میں پڑا ہے، ماں کہہ دیتی رمضان میں آ جائیں گے، رمضان بھی آ جائے اور باپ نہ آئے تو بچے ماں سے پوچھیں گے ابو کب آئیں گے، امی کہے گی عید پر آ جائے گے، عید بھی آ جائے، بچے جب ماں سے کہیں امی تم بھی جھوٹ بولتی ہو کیا، اللہ اس ماں پہ کیا گزر رہا ہوگا، اللہ بچے ماں سے پوچھیں اوروں کے لیے تو کپڑے لا رہے ہیں، ہمیں کپڑا لانے والا کون ہے، اوروں کے لیے کب جوتے دلا رہے ہیں، ہمیں جوتا منگوانے والا کون ہے، اللہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ امت کے اے اللہ لوگوں کو صاحب حیثیت لوگوں کو دلوں کو متوجہ فرما دیجیے اللہ، لوگوں کو اپنی زکات پوری پوری نکالنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ، پائی پائی کا حساب کر کے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائی، مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ، اے امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دینی دنیا میں خود بھی سعادت عطا فرمائیے، اے کریم پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دل سے اللہ جھوٹی اور گندی محبتوں کو دور فرما دیجیے، آپ کی سچی سچی محبت عطا فرمائیے، آپ کا تعلق عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، فقہ فی الدین عطا فرمائیے، اے اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، اے اللہ لمبے لمبے مراقبوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، اے کریم آقا ہم نے اپنے شاہِ نشان مانگا ہے، آپ اپنے شاہِ نشان ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ ہم نے بہت ساری چیزیں مانگنی تھی لیکن مانگ نہیں پائے، اللہ آپ بن مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، بغیر مانگے عطا فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ یہاں کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری فرمائیے، اے اللہ جو ارادے ہیں جو منصوبے ہیں اے اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، اے کریم آقا مخلصین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، اے اللہ اٹکے ہوئے کام اور رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، اے اللہ بری نظر سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، بدخواہوں کی بدی سے بچائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کی فضل و کرم سے اللہ جی آپ نے یہاں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی ہے، اللہ اے آپ ہی کا فضل ہے، اللہ آپ ہی کا کرم ہے، اللہ اس جگہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں، اللہ خالی نہ لوٹائیے، اللہ خالی نہ لوٹائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، اللہ کریم کا رحم کرم کے فیصلے فرمائیے، سب کو دین دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رحمتک